बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाक हिंद रवाबित। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के हालिया दौरे हिंदुस्तान के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक बार फिर अमन की बात चल पड़ी है और इस ताल्लुक़ से गुज़श्ता दिनों बाज़ इंतहाई खुशगवार बातें सामने आई हैं। अभी चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब में हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना रवाबित के फ़रोग़ पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और पाकिस्तान संजीदगी के साथ हिंदुस्तान के साथ तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का दौर ख़त्म हो चुका है और अब मसाइल का हल गुफ्तगू के ज़रिए निकाला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने सियाचिन के दौरे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हिंदुस्तान के साथ अमन के अमल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया था और कहा था कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि सियाचिन से अपने फ़ौजियों को वापस बुला लें, इसलिए कि इस महाज पर फ़ौज रखने पर दोनों मुल्कों को संगीन अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियाचिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लिए मुश्किल महाज है और हम नहीं चाहते कि तनाज़ात के सबब दिफाई अखराजात बढ़ें। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहते हैं। अशफाक परवेज कियानी ने कहा कि दिफा और तरक्की के अखराजात में तवाजुन होना चाहिए और दोनों ममालिक दिफा पर जो भारी रकम खर्च करते हैं वो अवाम के फलाह व बहबूद पर खर्च होनी चाहिए। पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ की जानिब से पहली बार अमन के अमल को आगे बढ़ाने पर इतनी ताकीद के साथ जोर दिया गया है, जो बहुत अहम है। इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के अंदर खुशाइंद करार दिया गया है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सहाफती हलकों ने आर्मी चीफ के इस बयान को काफ़ी सराहा है और तवक्को जाहिर की है कि हिंदुस्तान के अंदर भी इस बयान को मुनासिब पजीराई मिलेगी और मुस्बत जवाब सामने आएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अब दोनों मुल्कों के मसाइल को फ़ौजी नुक्ते निगाह से नहीं बल्कि सियासी नुक्ते निगाह से देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सियासी हयात के नए मरहले में दाखिल हो चुका है जिसमें हिंदुस्तान के साथ रकाबत के रिवायती नज़रिए के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान माजी की निस्बत अब हिंदुस्तान पर ज़्यादा एतमाद करता है और उम्मीद है कि कश्मीर का तनाज़ा मुज़ाकरात पर मनफी असरात मुरतब नहीं करेगा। हिंदुस्तान के साथ रवाबित के बारे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान, वज़ीर ख़ारजा का बयान और इसी के साथ वज़ीर आज़म की ताकीद कि हिंदुस्तान के साथ अमन के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा, ये वो बातें हैं जिनसे मुस्बत इशारे मिलते हैं कि अब दोनों ममालिक के रहनुमा की ख्वाहिश ये है कि वो अपने तमाम मसाइल को पुरअमन तौर पर हल करेंगे और ये उम्मीद पैदा हो चली है कि अब जंग की बातें नहीं की जाएंगी। तो आइए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार डॉक्टर कंदील अब्बास साहब मौजूद है। कंदील अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
कंदील अब्बास साहब, हिंदुस्तान के साथ रवाबित के बारे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो हालिया बयान है, आपके बारे में उसके मुहर्रिकात क्या हैं आपके ख्याल में?
बिल्कुल वाज़ह है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों से एक बुनियादी जो तब्दीली आई है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, वो उसका चूंकि हमेशा पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही थी वो इंडियन सेंट्रिक रही है और उसका मरकजी नुक्ता हमेशा हिंदुस्तान से ताल्लुकात रहा है, तो माजी में चूंकि पाकिस्तान के किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुकात की बुनियादी जो खतूत का तयन होता था वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस के मद्देनज़र होता था, लेकिन अब पाकिस्तान में सरकारी सतह पर भी और अवामी सतह पर भी एक बुनियादी तब्दीली आई है, और ये तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में भी आई है, और जो आर्मी चीफ का हालिया बयान है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव जेस्चर है वो इंडिया के लिए कि अब दोनों मुल्कों ने जंगें भी लड़ रही हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने, और जो बॉर्डर के ऊपर टेंशन है वो भी एक लंबे अरसे से देख ली, और जो कशीदा ताल्लुकात हैं वो भी देख लिए, और अब दोनों मुल्कों में ये रियलाइजेशन पाई जा रही है कि टेंस रिलेशन जो है वो दोनों मुल्कों की मईशत को तबाह बर्बाद कर रही है। टेंस रिलेशंस की वजह से दोनों मुल्कों का जो सालाना बजट होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके हथियारों पे और फौजी नौइयत के अखराजात पर चला जाता है। इस रियलाइजेशन के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की साइड से भी और हिंदुस्तान की साइड से भी एक पॉजिटिव चेंज आई है, जिसकी बुनियाद पर वो अब दोस्ताना अंदाज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये अगरचे अमल कई साल पहले शुरू हो गया था और इसको इसके आगाज़ के लिए CBMs यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बुनियाद बनाया गया था, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब भी एक पॉजिटिव चेंज आती है कोई एक ऐसा वाक्य रूनुमा हो जाता है जिसकी वजह से ये दोबारा से डिस्टर्ब हो जाता है ये अमल। अब ज़रूरत इस बात की है कि जब पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान से भी आ रहा है और पाकिस्तान की फौजी क्यादत, सियासी क्यादत और पाकिस्तानी आवाम की तरफ से जेस्चर आ रहा है, तो अगर मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़िया रुनुमा भी होता है तो उसको अमन के समल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी, और ये अमन का अमल जारी रहना चाहिए, इसलिए कि जो लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन के अमल को मुतासर करते हैं वो दोनों मुल्कों के मुश्तरक दुश्मन हैं, दहशतगर्दी या दहशतगर्द जो हैं वो दोनों मुल्कों के मुश्तरक दुश्मन हैं, और जब ये कॉमन थ्रेट होती है तो उसके लिए कॉमन स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है उससे डील करने के लिए, और कॉमन स्ट्रेटजी उस वक्त तक नहीं बन पाएगी जब तक दोस्ताना ताल्लुकात नहीं होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हिंदुस्तान के एक सीनियर तज्ज़िया निगार प्रोफेसर तुलसी राम साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर तुलसी राम साहब, आदाब अर्ज़।
जी
तुलसी राम साहब,
शादाबाद।
हिंदुस्तान के साथ अमन के अमल को आगे बढ़ाने और सियाचिन से फौजियों की वापसी के बारे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान पर हिंदुस्तान के अंदर सरकारी और गैर सरकारी दोनों सतह पर क्या रद्द अमल सामने आया है? रिएक्शन क्या रहा है?
जी, ये तो सबसे बड़ा रद्दे अमल ये है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान के सैनिक अधिकारी और जो सिविलियन अधिकारी हैं दोनों ने शांति की बात की है। भारत भी शांति चाहता है पाकिस्तान से, और जब तक जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता जो थे वो बता रहे थे कि दोनों देशों में समान समस्याएं हैं और इनका हल ढूंढना है, तो जब तक शांति नहीं स्थापित होगी तब तक कोई समान हल ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखने में आया है कि भारत में भी राजनैतिक अस्थिरता बड़े पैमाने पर है, पाकिस्तान में भी राजनैतिक अस्थिरता है, और समय समय पर आप देखते ही हैं कि पाकिस्तान में राजनैतिक अस्थिरता का ही परिणाम होता है कि कभी सैनिक शासन हो जाता है। भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है, लेकिन किसी एक पार्टी की सरकार न बनने से कोई डिसाइसिव कदम जिसको कहते हैं वो उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत में जो प्रेजेंट हुकूमत है एक सेकुलर हुकूमत है, तो वो दिल से चाहती है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरें। वहीं पर भारत में कुछ एक तबका ऐसा भी राजनैतिक है जो सांप्रदायिकता में विश्वास रखता है और सांप्रदायिकता की राजनीति करता है, तो वो लोग तो हमेशा विरोध करेंगे ही जिस तरह कि दोनों देशों में शांति स्थापित न हो, क्योंकि उनका पॉलिटिकल गोल जो है उससे सर्व होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। वो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन की राजनीति भारत में भी है जो धर्म के नाम पर वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये अंतर विरोध भारत में है और यही अंतर विरोध मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी है। लेकिन अब समय आ गया है जब दोनों मुल्कों के लोग जब शांति में रहेंगे तभी जो है वो भारत पाकिस्तान की समस्याएं, चाहे वो दहशतगर्दी की हो या आर्थिक विकास की समस्या हो, इवन हथियारों पर दोनों देश बहुत खर्चा करते हैं, अगर शांति स्थापित हो जाए तो हथियारों पर जो खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे विकास के कार्यक्रमों में दोनों देशों में लागू किया, जहाँ शिक्षा की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, ये सारी समस्याएं कामन हैं दोनों देशों में। तो जहाँ तक इसके रद्दोअमल का सवाल है, हमारा सरकारी महकमा जो है वो तो इस बात से खुश है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में 50 पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबके अलग अलग एजेंडे होते हैं, तो वो अंतर्विरोध तो है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नॉर्मल तौर पर ये देखा गया है कि हमारे देश में अकलियत की संख्या बहुत ज़्यादा है, खासकर माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसमें कई एक कम्युनिटी आती है, क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये सब देखते हुए ये बहुत ही ये एक एक तरह से कहा जाए कि फ़ायदेमंद ये प्रपोजल्स आए हैं, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भी इस प्रपोजल को लेकर के शांति की दिशा में अवश्य आगे बढ़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया
जी।
जी कंदिल अब्बास साहब, जनाब ये पाकिस्तान के ताल्लुक से ये एक बात सामने आती रही है कि पाकिस्तान की जो का जो सियासी सेटअप है, पाकिस्तान की हुकूमत और उसके सियासी रहनुमा, ये तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं, लेकिन ये समझा जाता था कि इसमें पाकिस्तान आर्मी का एक अहम रोल है, और जब तक पाकिस्तान आर्मी इसकी इजाज़त न दे, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो इस सिलसिले में एक हद से आगे नहीं बढ़ सकता है। अब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से अमन के अमल को आगे बढ़ाने की बात की गई है, तो इसमें खुद पाकिस्तान के जो दाखली हलके हैं उनका रद्द अमल क्या रहा है?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ का जो बयान है उसको जो पाकिस्तान में एक न्यू सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो जनरेट हुआ है इस न्यू एरा में, उसके तनाजुर में हम देख सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के स्टेटमेंट को, इसलिए कि पाकिस्तान में अगर माजी में कभी फ़ौज की तरफ से कोई रेजिस्टेंस होती थी तो उसकी बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान किसी सूरत में इंडियन डोमिनेंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान अगरचे एक छोटा सा मुल्क था, लेकिन हिंदुस्तान की इतनी बड़ी एक स्टेट जो थी, इतनी बड़ा एक मुल्क जो था, उसके सामने पाकिस्तान जो उसकी डोमिनेंस था उसको उसके बारे में फ़िक्रमंद रहता था कि कहीं पाकिस्तान छोटी रियासत होते हुए, एक छोटी टेरिटरी होते हुए, कहीं हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज हैं उसका शिकार ना हो जाए। इस अंदरूनी ख़तरे के पेश नज़र या इस तशवीश के पेश नज़र ये होता था कि आर्मी की तरफ से इस तरह के जेस्चर लिए जाते थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस हकीकत से भी आंखें नहीं चुराई जा सकती कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू से ही थे, और जो प्री 47 का पीरियड है 1947 का, उसमें कुछ ऐसे इश्यूज बने हुए थे कि जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के जो जियोग्राफिकली भी एक पार्टीशन हुई और आवाम को भी अलग होना पड़ा। लेकिन अब अलग होने के बाद जब दोनों सॉवरेन स्टेट्स बन गई हैं, तो ज़रूरत इस बात की थी कि दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी को का एहतराम करें और उसी की बुनियाद पर आगे बढ़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि माजी में दोनों मुल्कों को 3 जंगें देखना पड़ी, 65 में, 71 में, उसके बाद कारगिल का मौका आया, और इसके दरमियान भी बहुत से ऐसे मौके आए कि जब दोनों मुल्कों की फ़ौजें आमने सामने आईं। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कि फौज का कंसर्न हमेशा ये रहा है पाकिस्तान में कि जब अगर हिंदुस्तान से कोई मुज़ाकरात करने होंगे या वहाँ पर कोई डायलॉग होगा उसमें पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब अगर फ्यूचर में भी कुछ करना है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जो दोनों मुल्कों का डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए। और इसको बैलेंस करने का एक और तरीका भी यही होता है कि जो कॉमन थ्रेट्स हैं और जो कॉमन इंटरेस्ट है सिर्फ दोनों मुल्क मिलकर उनको एड्रेस करें। अब अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का इस तरह का स्टेटमेंट आया तो इसके पीछे पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें एक कंसेंसस मौजूद है कि दोनों मुल्कों ने अब अपने फ़ौज के ऊपर और फौजी अखराजात के ऊपर बहुत कुछ कर लिया। अब अगर फ्यूचर में जो जैसे कि पूरी दुनिया में जो इस तरह के इशूज़ हैं रिजॉल्व हो रहे हैं इनको रिजॉल्व किया जाएगा तो दोनों मुल्क वही पैसा अपने आवाम की बेहतरी और खुशहाली पर खर्च कर सकते हैं। और जो आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट है जाहिर है कि इसको पाकिस्तान के तमाम हलकों की तरफ से पूरी सपोर्ट हासिल है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात हो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कश्मीर एक बुनियादी नुक्ता है जो दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े का अहम तरीन सबब रहा है। कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रहनुमाओं के अब जो बयान आ रहे हैं ख़ुद पाकिस्तान के कि कश्मीर का मसला भी हम मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे, इस सिलसिले में पाकिस्तान के बाज़ तज़िया निगारों ने कश्मीरी आवाम से और कश्मीरी लीडरों से भी तआवुन की अपील की है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अमन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए वो आगे आएँ और इसको आगे बढ़ाने में तआवुन करें और इसी में उनका इंटरेस्ट है। इस सिलसिले में चलिए देखते हैं कि हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं का क्या ख्याल है। हमारा राबता टेलीफोन लाइन के ज़रिए बरकरार हुआ है सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब से। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब, आदाब अर्ज़ है जनाब। भट्ट साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन की बात चल रही है, पाकिस्तानी रहनुमाओं के जो बयान आए हैं उनके बाद बाज़ पाकिस्तानी तज़िया निगारों ने इस अमल को आगे बढ़ाने में कश्मीरियों से खास तौर पर तआवुन की अपील की है, इस बारे में आप क्या कहते हैं?
अमन और सलामती का रास्ता कश्मीर से ही होकर के गुजरता है और ये रास्ता इस्लाम दिल्ली भी पहुंचता है, इस्लामाबाद भी पहुंचता है। हम अमन चाहते हैं बिलाशुबा, बामानी अमन, वो अमन जिसमें कश्मीरियों की बालादस्ती मैं नहीं कहूंगा लेकिन कश्मीरियों की शिनाख्त दिखाई दे। और इस एतबार से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का जायजा लेना जरूरी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की खसूसियत को देखा जाए तो ये दोनों मुवाफिकाना भी है और मुतखालिफाना भी है। और जहां दोनों मुवाफिकाना रवैये और मुतखालिफाना रवैये बरसरे कार हों तो फिर जाहिर है कि बड़ी पेचीदगियां पैदा होती रहती हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पेचीदगियां हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के ताल्लुकात में नज़ाकतें हैं और फिर बदनसीबी ये है कि बड़ी तलखियां हैं। इन तलखियों को दूर करने के लिए, इन पेचीदगियों को दूर करने के लिए अब एक एहसास उभर रहा है दिल्ली में भी, इस्लामाबाद में भी, और ये एहसास खुद कश्मीर में भी उभर चुका है पहले से ही कि इस एहसास को तकवियत पहुंचाई जाए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पे उस्तवार किया जाए। और ये तब ही हो सकता है जब उन तमाम मसाइल को मजमूई तौर पे ले लिया जाए जिनके नतीजे में ताल्लुकात में तलखियां पैदा हुई हैं, जिनके नतीजे में ताल्लुकात में कशीदगी और तनाव पैदा होता रहा है। और इसलिए जाहिर है कि कश्मीर के मसले का हल चूंकि हमारी राय में जनूबी एशियाई खत्ते के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका हल निकालना बहुत जरूरी है बल्कि नागुजीर है। दूसरी बात यह कि कश्मीर के मसले का हल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की बुनियाद करार पाता है उस बुनियाद को छोड़ के आगे बढ़ना मुझे तो यूं महसूस होता है कि जैसे नामुमकिन हो। और अगर फर्ज कर लेते हैं कि आपके ये फैसला हो जाता है कि आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने में भी हकीकत पसंदी से काम लिया जाए, तलख सियासी हकीकतों का इदराक करते हुए आगे बढ़ा जाए और इन मामलात को सुलझाने के लिए न सिर्फ ये कि बामानी नतीजा खेज बातचीत का आगाज हो, बल्कि कश्मीरियों की शमूलियत को यकीनी बनाते हुए ये समझा जाए कि ये कश्मीर के मसले का हल अब खुद अफगानिस्तान में बाहरी अमन के लिए भी मुमिद व मुआविन साबित होगा। और मेरा तो ये ख्याल है कि हिंद चीन दोस्ती के हवाले से भी अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोस्ती जो कश्मीर के मसले के हल पे मुनहसर है, बहुत ही आगे बहुत ही मुमिद व मुआविन साबित हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, लाइन पे रहिएगा। प्रोफेसर तुलसीराम साहब, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट की गुफ्तगु आपने मुलाहजा फरमाई, उनका कहना यह है कि कश्मीर जो एक दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई झगड़े इख्तलाफ तनाज़े की बुनियाद रहा है, यही मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती के मजबूत होने की बुनियाद बन सकता है और इस मसले के हल में कश्मीरियों को शामिल किया जाए और कश्मीरियों की आइडेंटिटी पर तवज्जो रखी जाए और उसको यकीनी बनाया जाए। क्या कहेंगे आप इस बारे में?
जी, यह बात तो बिल्कुल सही है कि जो कश्मीरी शिनाख्त की बात है या आइडेंटिटी की, उनकी आइडेंटिटी को तो निश्चित रूप से कोई भी आँच नहीं पहुंचाना चाहेगा, भारत भी कभी नहीं पहुंचाना चाहेगा। हमारे देश में तमाम अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, उनका अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन कम से कम अभी तक हिंदुस्तान में हमने देखा है कि सभी लोग मिलजुल करके यहाँ रहते हैं। कभी कभी कुछ समस्याएं सांप्रदायिकता की जो है वो खड़ी हो जाती है निश्चित रूप से, लेकिन वो कोई नेशनल एजेंडा भारत का नहीं है। वो एक वर्ग ऐसा है कि जो इस तरह की चीज़ों में फिरका परस्ती में विश्वास रखता है या फिरका परस्ती की राजनीति भी करता है, ये बात सही है अपनी जगह पर। लेकिन वहीं पर जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, अभी गिलानी साहब जो कह रहे थे कि हमने ये देखा है कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तब तब कश्मीर की समस्या जो है वो एग्रेवेट किया है। जब भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य रहते हैं तो कश्मीर की समस्या भी लगभग सामान्य सी हो जाती है। यह मैं समझता हूँ एक मूल मंत्र है ये कश्मीर की समस्या और भारत पाकिस्तान के रिलेशन में। तो यह मैं समझता हूँ कि जब तक भारत पाकिस्तान के संबंध नहीं दुरुस्त होंगे तब तक कश्मीर की समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता है। इसलिए ये सबसे पहले ज़रूरी है कि भारत पाकिस्तान जो हैं वो शांति से रहें, और जब शांति से दोनों देश रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर में भी शांति बहाल हो जाएगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कंदील अब्बास साहब, प्रोफेसर तुलसीराम की गुफ्तगु आपने मुलाहजा फरमाई, इनका कहना यह है कि कश्मीर का जो मसला है वो भी हल होगा उस सूरत में कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुर्बत बढ़े, दोस्ती बढ़े और इनके दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत हों।
बिल्कुल, ये शांति से रहना या फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ मैं अब्दुल गनी भट्ट साहब से इत्तेफाक करूँगा कि जब कश्मीर के अंदर लगी हुई आग को इग्नोर करके कोई शांति पैदा करने की कोशिश की जाएगी या दोस्ती पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो ये मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान आग का एक अलाव है वो जो जल रहा है और इसने दोनों मुल्कों के दामन को अपनी लपेट में ले रखा है। जब दोनों मुल्कों का दामन आग की लपेट में हो तो वो किस तरीके से दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले दोनों मुल्कों के जो हुकूमतें हैं और आवाम है, उनको मिलकर कोई ऐसा राय हल ज़रूर निकालना होगा कि इस आग के जो रोशन अलाव है इसको वो बुझा सकें और इसको ख़त्म कर सकें। जब तक ये बंद नहीं होगा उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो टेम्परेरी बेसिस पे होंगे, और फिर छोटा सा कोई वाक़या ऐसा अगर होता है तो उसके बाद दोबारा से ये अमन का अमल जो है वो तातुल का शिकार हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन कश्मीर इशू का नहीं आएगा तो किसी परमानेंट पीस प्रोसेस को एक्सपेक्ट करना मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं होगा। ज़ाहिर है कि जब से पाकिस्तान बना है और हिंदुस्तान की पाकिस्तान की पार्टीशन हुई है, ये इशू उस वक्त से शुरू हुआ है, और अब तक जो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगें हुई हैं या कशीदगी रही है, वो फौजी कशीदगी हो या सियासी कशीदगी हो, इस तमाम टेंशन की बेस कश्मीर का इशू मेन रहा है। अगरचे इसमें और भी इशूज़ थे, पानी का इशू है और बाकी इश्यूज भी आते रहे हैं, लेकिन उसका मरकजी नुक्ता हमेशा जो मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल लिटरेचर के अंदर, इंटरनेशनल डायलॉग के अंदर, रीजनल इश्यूज के अंदर, वो कश्मीर का इशू था। अब कश्मीर के इशू को मैं समझता हूँ इग्नोर करके हकीकत पसंदाना नहीं होगा कि हम ये कहें कि दोस्ती का अमल आगे बढ़ सकता है, और इस मसले को हल करने के लिए जाहिर है कि डायलॉग बेहतरीन रास्ता है, और जब तक दोनों मुल्कों के लोग आपस में बैठ कर इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि मैदान जंग में दोनों मुल्कों ने देख लिया कि ये मसला हल नहीं हो पाया। अब टेबल टॉक के ऊपर, मेज़ के ऊपर बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए, और इसका अहम तरीन फरीक जो है ख़ुद कश्मीरी आवाम है, कश्मीरी लीडर्स हैं, उनको इस अमन के अमल में लाजमी तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।
शुक्रिया कंदील अब्बास साहब। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब, आप लाइन पर हैं जनाब?
हाँ बताइए क्या
जी। ये प्रोफेसर तुलसी राम साहब ने बजाय इसके कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन पर कश्मीर के असरात की तरफ पर तवज्जो देते, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस का कश्मीर पर क्या असर पड़ता है। उनका कहना यह है कि देखा यह गया है कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ा है, कशीदगी बढ़ी है, तो कश्मीर के अंदर हालात में कशीदगी आई है, और जब इन दोनों के ताल्लुकात, इनके रिलेशन नॉर्मल हुए हैं, मामूल पर आए हैं, अच्छे होने लगे हैं, तो कश्मीर के हालात भी अच्छे होने लगते हैं। तो इससे उन्होंने नतीजा ये निकाला है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती बढ़ेगी, ताल्लुकात अच्छे होंगे, तो मसले कश्मीर भी अच्छी तरह से दोस्ताना माहौल में हल किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में?
कश्मीर के मसले को एक मखसूस पस मंजर में देखना होगा। अवलन ये कि कश्मीर का एक सियासी पस मंजर है, दूसरे ये कि इसका एक तारीखी पस मंजर है, तीसरा ये कि इसका एक बरसगीर का पस मंजर है, चौथा ये कि इसका एक आलमी पस मंजर है, पांचवा ये अब इसका एक जौहरी हथियारों का पस मंजर है, छठा ये कि इसका एक और पस मंजर है, वो ये कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नेटो की फौज, ये इतनी बड़ी चीज हो चुकी है ये कश्मीर की वादी कि अब इसे सर पे नजर नहीं किया जा सकता। हमारी राय ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को उस्तवार किया जाए, खुशगवार बनाया जाए, लेकिन साथ साथ उसके उसके जिलों में उन तमाम तनाजात की तरफ तवज्जो मबजूल की जाए जिनके नतीजे में ये तलखियां पैदा होती रही हैं। अब जाहिर है कि जब तक कोई 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 वजह न हो तब तक कोई नतीजा सामने नहीं आता है। ये ताल्लुकात में खराबी कैसे पैदा होती है पहले तो ये देखना है। ताल्लुकात में खराबी यूं ही तो पैदा नहीं हो सकती, ताल्लुकात में खराबी इस वजह से पैदा होती है, कोई न कोई बाइस होता है, कोई न कोई वजह होती है, कोई न कोई झगड़ा होता है, वो कश्मीर हो, वो नहरी पानी हो, वो और कोई बात हो, लेकिन ये बातें हैं जिनकी तरफ तवज्जो करना पड़ेगी। हमारी राय में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब जब लड़ाइयां हुई तो कश्मीर के तनाजे के हवाले से हुई। हमारी राय में जब जब ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ, कशीदगी पैदा हुई, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इन इस तनाव ज्यादा या कशीदा ताल्लुकात के को कश्मीर से अलाइदा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी राय यह है कि हिंदुस्तान की कयादत, पाकिस्तान की कयादत, बशमूल कश्मीरी कयादत वसतों का मुजाहरा करते हुए, हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए, दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए, मुजाकराती अमल को आगे बढ़ाते हुए अमन को बहाल करें और मुस्तकबल की हिफाजत की जमानत पेश करें।
जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तुलसी राम साहब। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दिफाई और तरक्कियाती बजट में बैलेंस की ज़रूरत पर जोर दिया है, तवाज़ुन की ज़रूरत पर जोर दिया है, और उनका कहना यह है कि दोनों मुल्कों का जो दिफाई बजट है और तरक्कियाती बजट है उसमें तवाज़ुन नहीं पाया जाता है, इसको मतवाजन करने की ज़रूरत है। दिफाई बजट, डिफेंस का बजट कम किया जाए और तरक्की का बजट बढ़ाया जाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जी जी हाँ जी, ये बिल्कुल ये समय की मांग है कि न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बल्कि सारी दुनिया में डिफाई बजट जो है उसमें कमी लानी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे अमेरिका और नाटो के देश हर जगह तनाजा पैदा कर रहे हैं सारे मुल्कों में, और जो लोग उनकी विदेश नीति से इत्तफाक नहीं रखते हैं वहाँ पर वे एनजीओ खड़ा कर देते हैं, कुछ इस तरह के संगठन, वो जैसा हमने देखा ट्यूनिसिया में, यमन में, लीबिया में और इजिप्ट में, यहाँ तक कि सीरिया में वैसी ही कोशिश की जा रही है, ताकि जब तनाजा बढ़ेगा तो वो इंटरवेन करने आएंगे नाटो के लोग, और फिर वो हथियारों को वहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी हथियार इंडस्ट्री चल पड़ेगी। तो ये जब तक तनाजा दुनिया में कायम है तभी तक हथियारों की इंडस्ट्रीज़ में वृद्धि होती रहेगी, उसमें उत्पादन ज़्यादा होता रहेगा। तो यह इस समय जो कयानी साहब ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बयान है ये, कि दोनों देशों का जो डिफाई बजट है उसमें कमी होना चाहिए। दोनों देशों के में विकास की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, बेरोज़गारी हल करने की ज़रूरत है। एक चीज़ इस मायने में मैं कहूँगा कि हमारे देश में आर्मी जो है वह ऑटोनोमस नहीं है, वह पॉलिटिकल लीडरशिप के अंतर्गत हमेशा काम करती रही है। तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट मैं समझता हूँ कि जो डिसीजन जो है या निर्णय लेने की जो परंपरा है वो राजनीतिक हलके से ही आती है, आर्मी अपने से कोई स्टेप यहाँ नहीं उठाती है। तो ये इसका मतलब ये है कि जब राजनैतिक संबंध दोनों देशों के बीच में सुधर जाएं तो निश्चित रूप से डिफाई बजट में भी कमी आएगी। जब शांति स्थापित होगी, एक भाईचारा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि जनता से जनता तक ये संबंध, भारत पाकिस्तान की जनता में आपस में ये दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के जो विद्वान लोग हैं, आलिम लोग हैं, वो पाकिस्तान जाएं, वहाँ के लोग यहाँ आएं, अपनी बात वो कहें, हम अपनी बात वहाँ जाके कहें, और इस तरह से यह जन संपर्क जिसको कहते हैं या पीपल्स टू पीपल रिलेशन, इसकी बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है इस तरह के संबंध बनाने में। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिफाई बजट जो है वह निश्चित रूप से कम किया जाना, भारत भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है और पाकिस्तान भी करता है, तो ये विकास के कार्यक्रम जो है तब तक सही ढंग से नहीं लागू हो सकेंगे जब तक कि ये डिफेंस बजट कम ना किया जाए। दोनों देश न्यूक्लियर मुल्क बन गए हैं, न्यूक्लियर हथियारों की होड़ जो है दोनों देशों में लगी हुई है और इस पर बहुत खर्चा आता है, और इनको बनाने में जितना नहीं खर्चा आता है उससे ज़्यादा उसको मेंटेन करने में, उसकी रखरखाव, उसकी सुरक्षा में आता है खर्चा। तो ये दोनों देश मिसाइलों का को ईजाद कर रहे हैं, नई नई मिसाइलें बना रहे हैं, तो ये एक मिसाइल के खर्चे में सैकड़ों की संख्या में स्कूल खोले जा सकते हैं, जो प्राइमरी स्कूल बहुत ज़रूरी हैं, दोनों देशों में ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि डिफाई बजट में कमी लाना जो है यह न सिर्फ विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा बल्कि भारत पाकिस्तान के संबंधों को भी दुरुस्त करेगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कंदील अब्बास साहब। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जी दोनों मुल्कों के दिफाई और तरक्याती बजट के बारे में आपकी राय क्या है?
देखिए, ये जैसा कि पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दोनों मुल्कों में एक तरफ तो हम देखते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, लेकिन जो सोसाइटी का एक मेजर पोर्शन है वो स्टिल अभी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और दोनों मुल्कों में अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज बहुत हाई लेवल पे है। इस पूरे रीजन में जो गुर्बत है वो बहुत ज़्यादा है, और इस रीजन में ऐसे लोग जो छत के बगैर हैं, घर के बगैर हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि अभी हाल ही में चंद दिन पहले हिंदुस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया, उसके फौरन बाद पाकिस्तान ने भी उसका एक तजर्बा कर दिया, एक और बैलिस्टिक मिसाइल का। जैसा कि तुलसी राम साहब कह रहे हैं कि इन तजर्बात पे या इस तरह के मिसाइल्स पे दोनों मुल्कों के करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, और यही पैसा अगर उनके जो डेवलपमेंटल बजट है और जो मुल्कों के आवाम की जो गुर्बत है उसको दूर कर सकता है उसके ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब ये डिफेंस बजट को काट कर और उसकी वजह से डेवलपमेंटल जो बजट है उसको इंक्रीज करेंगे, इसके साथ साथ ज़रूरी यह है कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि दोनों मुल्कों को ये मौका मिले कि वो अपना डिफेंस बजट कम कर सकें। मसलन कल बुध के रोज़ जैसा कि एस एम कृष्णा साहब ने हिंदुस्तान की लोकसभा में अपने स्टेटमेंट में बड़ा क्लियरली कहा है कि अब जो सदर जरदारी का दौरा था हिंदुस्तान से, उसके बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है और बड़े पॉजिटिव जेस्चर थे, और जो दोनों मुल्कों के वज़राए दाखला की जो मीटिंग्स थी रेगुलर, वो पिछले दिसंबर से रुकी हुई थी और उसमें तातुल पैदा हुआ था। उन्होंने बड़ी अच्छी एक खुशखबरी दी कि वो मई के एंड में इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, और उसमें जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात थी उन्होंने बताया है कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ाद वीज़े के ऊपर भी इत्तेफाक हो गया, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान आना जाना ताजरों का, आम लोगों का आना जाना एक सहूलत पैदा हो जाए। ज़ाहिर है इस तरह के माहौल जब पैदा होगा तो दोस्ती का एक आगाज़ होगा और जो टेंशन का माहौल है वो कम हो जाएगा। ऐसा माहौल जब पैदा हो जाएगा, ऐसे इन्वायरमेंट में दोनों मुल्क इस बात पर सोच सकते हैं कि आप अपना डिफेंस बजट कम करें और वो पैसा अपने मुल्कों के आवाम की खुशहाली पर लगाएं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब।
जी
जनाब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अभी गुज़श्ता यानी कुछ महीने पहले तक एतमाद साजी की बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता था कि एतमाद साजी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर ज़्यादा ताकीद की जाती थी, लेकिन अभी एक हफ्ता हो रहा है या इससे भी कम, पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने एक हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर से जो इंटरव्यू दिया है उसमें बड़ी अहम बातें उन्होंने की हैं। उनका कहना यह है कि अब हिंदुस्तान की पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से हिंदुस्तान के साथ रकाबत की जो रिवायती फिक्र थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब इस्लामाबाद को नई दिल्ली पर ज़्यादा एतमाद है। तो ये जो एतमाद की बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान पर सिर्फ एतमाद ही नहीं बल्कि ज़्यादा एतमाद कर रहा है, तो इस दरमियान तब्दीली क्या आई है, चेंज क्या आया है कि जिससे ये एतमाद बढ़ा है?
मेरा ये ख्याल है कि पहले मैं ये बताऊं कि कश्मीर में हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं, हिंदुस्तान का भला चाहते हैं।
जी
हमारी हमारी राय में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती के बड़े जबरदस्त फायदे हैं, वो न सिर्फ ये कि हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के नसीब होंगे बल्कि हमारे भी नसीब होंगे। हमारी तकदीर तो जुड़ी हुई है उसी दोस्ती के साथ जो दोस्ती हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पैदा होनी चाहिए, और इसलिए अगर कहीं कोई गलतफहमी पैदा हो चुकी हो तो उसको दूर करने के लिए यकीनी तौर पे एतिमाद साजी लाजिम है, और उस एतिमाद साजी का मैं ये नहीं कहूंगा कि आगाज तन्हा और तन्हा कश्मीर से ही हो, मसला फिल वक्त पूरे खित्ते का है, और अगर हमें इस खित्ते को महफूज बनाना है और मुस्तकबिल को रोशन बनाना है और आइंदा नस्लों के लिए इस खित्ते को एक अगर जन्नत न सही तो कम से कम जहन्नम न बनने दिया जाना है। तो फिर जाहिर है कि हमें एक मजबूत अमल का आगाज करना पड़ेगा। वो मजबूत अमल क्या हो, वो मजबूत अमल एतिमाद साजी कहलाए तो कहलाए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन एतिमाद साजी की तवजीह की जानी चाहिए और उसका असर कश्मीर में न सिर्फ ये कि जमीन पे दिखाई देना चाहिए बल्कि दिलों के लोगों के दिलों में महसूस किया जाना चाहिए, तभी तो दिल वो एतिमाद साजी हो। जब दिलों में एतिमाद ही पैदा न हो तो जमीन पे एतिमाद साजी के नाम पे अगर कुछ किया जाए तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में एतिमाद साजी के इकदाम उठाते हुए कश्मीर को ना भूलें, कश्मीर को फरामोश न करें, कश्मीर को साथ लेकर के चलें, कश्मीरियों को साथ लेकर के चलें, तो फिर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का भी भला होगा, पाकिस्तान का भी और पूरे जनूबी एशियाई खत्ते का भी भला होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल जो अलामतें जो इशारे मिल रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि एतिमाद दोनों मुल्कों में बढ़ा है, लेकिन जैसा कि प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और एतिमाद बढ़ रहा है तो इसके असरात कश्मीर में भी नज़र आने चाहिए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।